ओम शांति। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमारी विशेष पालना यज्ञ के ऐसे विशेष रत्नों से बाप दादा कर रहे हैं। आज ऐसी एक अलौकिक हस्ती हमारे मध्य उपस्थित है जिसकी सारे विश्व में मांग है, तो हम सभी एक हाथ की अव्यक्त ताली से आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय भाई जी का प्रैक्टिकल जीवन ही हम सभी ब्रह्मा वत्सों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है। भाई जी पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट रहे हैं, उन्होंने बीएससी में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। पढ़ाई में इतने होशियार रहने के बावजूद भी भाई जी ने यज्ञ में समर्पित होकर भंडारे की सेवा स्वीकार की है। ये भाई जी की निर्माणता का प्रतीक है। यज्ञ का टोली डिपार्टमेंट आप ही संभालते हैं, आप युवा प्रभाग के मधुबन कोऑर्डिनेटर भी हैं, साथ ही साथ आपने विश्व के अनेक देशों में ईश्वरीय सेवा के लिए भ्रमण किया है। आज हम भाई जी के ही मुख से अनुभव युक्त क्लास सुनेंगे। विशेष आज का क्लास है साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि और पुरुषार्थ। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी,
ओम शांति। साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि और पुरुषार्थ। इस महायज्ञ की स्थापना में साक्षात्कार की धूम मची थी। ब्रह्मा बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ तथा विष्णु चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ। और जो हमारी दादियां हैं वो छोटी छोटी थीं, तो उनको उनके बाल्यकाल में ही किसी को कृष्ण का साक्षात्कार तो किसी को नारायण का साक्षात्कार हुआ। परिणाम स्वरूप वो यज्ञ का हिस्सा बन गई, यज्ञ में समर्पित हो गई। तो ऐसे जो आदि काल में साक्षात्कार की धूम मची थी, ऐसे अंतिम काल में भी साक्षात्कार की धूम मचने वाली है। हाँ, तालियां बजाओ जरा अच्छी तरह से। साक्षात्कार की धूम मचेगी, सारे संसार को पता चल जाएगा साक्षात्कार के द्वारा कि निराकार भगवान भारत में माउंट आबू की धरती पर पधारे हैं। ये सारे संसार को पता चल जाएगा। लेकिन ये साक्षात्कार का पाठ शुरू होने के पहले हमें साक्षात मूर्त बनना होगा। साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें कुछ प्रयास प्रसाद करना होगा। साक्षात्कार मूरत बनने की विधि क्या है, साक्षात्कार इस शब्द में साक्षात आकार ये दो शब्द समय हैं। आकार अर्थात आकारी स्वरूप, आकारी स्वरूप अर्थात फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करना ही साक्षात्कार मूरत बनने की विधि है। अभी साक्षात्कार मूरत बनने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ठोस अभ्यास करना होगा। कुछ एक बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात, साक्षात्कार मूरत बनने के लिए हमें साक्षी दृष्टा बनना होगा। साक्षी दृष्टा बनना अर्थात जो हम इन आंखों से देखते हैं उसके प्रभाव से परे होकर देखना, चाहे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, किसी परिस्थिति को देखते हैं, घटना को देखते हैं, तो निष्प्रभाव के भाव से हमें देखना है, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा बनना। उसका बहुत सुंदर उदाहरण है, प्यारे शिव बाबा परम धाम में बैठे हैं और वहां से इस सृष्टि पर चलने वाले ड्रामा को साक्षी होकर देख रहे हैं। हरेक आत्मा का पार्ट कैसा चल रहा है ये साक्षी होकर देख रहे हैं, न्यारे प्यारे होकर देख रहे हैं। और जब बाबा डायमंड हॉल में आते हैं तो उस समय हम अनुभव करते हैं बाबा हमारे साथी बने हैं, हमें बहुत प्यार की पालना दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वापस परमधाम चले जाते हैं उस समय बिल्कुल साक्षी होकर रहते हैं। बच्चों से अभी अभी बहुत प्यारे थे और अभी अभी बिल्कुल न्यारे हो गए हैं, ऐसा हम सभी अनुभव करते हैं। तो ऐसी साक्षी दृष्टा स्थिति हमें भी विकसित करना है, क्योंकि साक्षी दृष्टा वाले ही साक्षात्कार मूरत बनते हैं। दूसरी बात, साक्षात्कार मूरत बनने के लिए हमें आत्मिक दृष्टि का बहुत गहराई से अभ्यास करना जरूरी है। साक्षात्कार शब्द का दूसरा अर्थ है साक्षात् कार, आत्मा स्वयं को समझकर इस देह रूपी कार को साक्षी होकर देखना, अर्थात इस देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास करना। तो इस अभ्यास को जितना हम करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो साक्षात्कार मूरत बनते जाते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, बाबा त्रिमूर्ति हैं और आप बच्चे भी त्रिमूर्ति हैं। कैसे? जब आप गहराई से आत्मा का अभ्यास करते हैं तो तीन प्रकार की लाइट आपसे निकलती हैं। एक लाइट है आंखों से लाइट निकलना, ऐसा अनुभव होता है आंखों में दो बल्ब जल रहे हैं और उसकी लाइट फैल रही है। और दूसरी लाइट है मस्तक से लाइट निकलना, और तीसरी है माथे पर लाइट का क्राउन अनुभव करना। तो ऐसे त्रिमूर्ति स्वरूप भी हम अनुभव करते हैं, लेकिन उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत गहराई से बढ़ाना जरूरी है। आत्मा के अनुभव को अच्छी तरह से बढ़ाते रहने से हमें अंत में बहुत अच्छा लाभ होता है। वो कैसा लाभ होता है? रात्रि के समय अगर कोई व्हीकल रास्ते पर दौड़ता है तो सामने से कोई व्यक्ति आता है तो व्हीकल की लाइट उसकी आंखों पर पड़ती है, परिणाम स्वरूप वो व्हीकल को देख नहीं पाता है लाइट के कारण। ऐसे ही अंतिम समय कोई आसुरी शक्ति हम पर वार करना चाहे तो आत्मा की लाइट इतनी प्रखर होगी जो उसकी आंखों पर वो पड़ेगी तो उसको ये व्हीकल शरीर नजर नहीं आएगा, तो वो सोचेगा अभी अभी तो मैंने यहाँ एक व्यक्ति को देखा लेकिन अभी तो लाइट ही नजर आ रही है, चलो वापस चलते हैं। तो लाइट का साक्षात्कार हमारे द्वारा होने से हम सेफ रहेंगे आसुरी शक्तियों के वार से। हमने देखा भक्ति मार्ग में कई ऐसे कट्टर भक्त होकर गए हैं, वो भगवान को कहते थे मुझे आप साक्षात्कार कराओ, दर्शन कराओ, नहीं तो मैं अपना सिर काट दूंगा। यहां तक भी कई भक्तों ने अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। ये किसकी निशानी है? बाबा के बच्चे बनने के बाद हमें देहाभिमान को काट देना है, देहाभिमान को नष्ट कर देना है। तो वो नष्ट तब होगा जब आत्मा का बहुत अच्छी तरह से अनुभव हम बढ़ाते रहेंगे। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहेंगे तो साक्षात्कार मूर्त बनते जाएंगे, हमारे मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता रहेगा। तो उसके लिए हमारा लक्ष्य हो संपूर्ण आत्म अभिमानी मुझे बनना है। केवल आत्म अभिमानी नहीं, संपूर्ण आत्म अभिमानी अर्थात 100% आत्मा का भान होना और 0% देह का भान होना, इसको कहते हैं संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना। तीसरी बात है साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें स्वयं के स्वमान में एकाग्र होकर रहना होगा। स्वमान में हमें सदा रहना है, जैसे कि मैं अव्यक्त वतन वासी फरिश्ता हूं, मैं अकाल तख्त वासी आत्मा हूं, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता लाइट के कॉर्ब में हूं। तो जो भी स्वमान के पॉइंट आपको अच्छी लगती हैं, उसका अभ्यास आपको करना है। उससे क्या होगा? दो शब्द हमेशा याद रखना, फाइट और फ्लाइट। जब हम स्वमान में नहीं रहते हैं तो माया की दुनिया में स्वयं को अनुभव करते हैं तो माया से हमारी फाइटिंग होती रहती है, फाइट होती रहती है और उसमें हमारी बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। तो हमें माया से फाइट नहीं करना है लेकिन परम धाम की फ्लाइट लेना है। बाबा के पास बैठने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्वमानधारी होकर रहना होगा। जब हम श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे में, ईश्वरीय खुशी में झूमने लगती हैं। मन बुद्धि हल्की फुल्की होती है, ऊपर की ओर हमें ले जाती हैं और बाबा के पास बिठा देती हैं। ये स्वमान काम करता है। ऊपर वाले को याद करना है तो स्वमान का हाथ पकड़ना होगा। स्वमान का हाथ ही हमें भगवान का साथ दिलाता है। हमें याद रखना है, बाबा की याद को जितना हो सके बढ़ाते रहना है। ये बाबा की याद बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते रहें। भक्ति मार्ग में हम कहते थे, जिधर देखो उधर तू ही तू। ये किसका गायन है? ये हमारी याद का गायन है। जब हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में बाबा बसे हुए रहते हैं तो हमें जहां हम देखते हैं हमें बाबा ही बाबा नजर आते हैं। तो ऐसी याद समाई हुई हो, रग रग में हमें बाबा की याद अनुभव हो, तो ये स्वमान हमें साक्षात्कार मूर्त बनाता है। क्योंकि बाबा की याद में जब हम रहते हैं तो हमारे सूरत से भगवान की सीरत स्वतः ही अनुभव होती है। इसलिए ऊंचे स्वमान में रहने से हमारी स्थिति भी ऊंची बनती जाती है। चौथी बात, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें पवित्रता की शक्ति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मनसा वाचा कर्मणा में कोई अपवित्र संकल्प आता है, नकारात्मक संकल्प आता है, तो भी समझो हमारी पवित्रता खंडित हो गई है। ब्राह्मणों के मन में अगर कोई कामना है तो भी समझो काम विकार का अंश मुझ में है। परिणाम स्वरूप हमारी पवित्रता खंडित हो सकती है। पवित्रता को दूसरे शब्दों में ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये ब्रह्मचर्य शब्द कहां से आ गया है? ब्रह्मा से ये शब्द ब्रह्मचर्य आया है। अर्थात ब्रह्मा बाबा की पवित्रता की शक्ति इतनी ऊंची थी, इतनी ऊंची थी, सारे संसार में किसी भी धर्म पिता महान आत्मा किसी के भी नहीं थी। सबसे महान सबसे ऊंची ब्रह्मा बाबा की पवित्रता की स्थिति थी। ऐसे ही हमें फॉलो फादर करना है और पवित्रता की बहुत ऊंची स्थिति बनाना है। क्योंकि पवित्रता की खुशबू चारों तरफ जब फैलती है तो पवित्रता चुंबक का काम करती है और अनेक आत्माएं हमारे तरफ खींची खींची आ जाती हैं। हमें ये ध्यान रखना है, संपूर्ण पवित्रता अर्थात मेरे दिल में एक बाप दूसरा न कोई हो। अगर किसी के तरफ थोड़ा सा भी झुकाव या लगाव है, थोड़ा सा भी आकर्षण है, तो भी हम आकर्षण मूर्त नहीं बन सकते हैं। और जो आकर्षण मूर्त नहीं बनते हैं वो साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमारा आकर्षण बिंदु केवल बाबा ही हो। पवित्र आत्माओं को भगवान से बहुत सुंदर एक तोहफा मिलता है, बहुत सुंदर एक गिफ्ट मिलती है, वॉइसलेस वायरलेस सेट की गिफ्ट पवित्र आत्माओं को मिलती है, जिसके आधार से पवित्र आत्माएं परमात्मा से जब चाहें कहीं पर भी बात कर सकते हैं, और परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर रख सकते हैं। ऐसी पवित्र आत्माएं भगवान के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं अनुभव करती रहेगी और अनेक आत्माएं आंखों रूपी टीवी में भगवान की लीलाएं देखेगी और अपने भाग्य को सराहना करती रहेगी। तो इतनी बड़ी उपलब्धि हमें पवित्रता से होती है, इसलिए हमें बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति को अपनाना है। कई बार हम देखते हैं चलते चलते किसी व्यक्ति के तरफ थोड़ा सा झुकाव हमारा हो जाता है, क्योंकि हमारा 63 जन्मों से कई आत्माओं के साथ नेगेटिव अकाउंट भी हैं और पॉजिटिव भी अकाउंट हैं, तो ना चाहते हुए हमारा आकर्षण किसी ना किसी के तरफ होने की संभावना होती है। लेकिन हमें एक बात याद रखना है, फैमिलियरिटी का कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है। अगर फैमिलियरिटी किसी के प्रति हमारे दिल में होती है तो हम ईश्वरीय सुखों से अपने को कोसों दूर अनुभव करते हैं और सुंदर गहन योग के अनुभव से वंचित रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाप समान हमें पवित्रता को अपनाना ही है, क्योंकि पवित्र आत्माओं पर परमात्म प्यार सदा बरसता रहता है। हम चाहते हैं भगवान जो प्यार का सागर है उसका हमें प्यार मिले, लेकिन पवित्र आत्माओं पर परमात्म प्यार स्वतः ही बरसता रहता है। और दूसरी बात, जितनी पवित्रता उतनी भविष्य पद के लिए पात्रता हमारी होती है, इसलिए पवित्रता के सब्जेक्ट को हमें बहुत पक्का करना है। हम देखते हैं हम अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करने पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मा की पर्सनालिटी ही है प्यूरिटी, आत्मा की प्रॉपर्टी ही है प्यूरिटी। तो आत्मा की प्रॉपर्टी को या पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए हमें प्यूरिटी को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है, तभी हम साक्षात्कार मूर्त बनते जाएंगे। पांचवी बात, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए फरिश्ता स्थिति को हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को हमें बढ़ाते रहना है। फरिश्ता अर्थात लाइट और माइट का हाउस अनुभव करने वाला, एकदम ज्ञान सूर्य से जो ज्ञान की लाइट हमें मिलती है उसका वो हाउस होता है, और सर्वशक्तिवान परमात्मा से जो हमें माइट मिलती है उसका भी वो हाउस होता है। तो ऐसी लाइट और माइट हाउस की स्थिति अनुभव करना ये फरिश्ते की निशानी होती है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला में उड़ते रहने वाला, फरिश्ता अर्थात जिसके सारे रिश्ते भगवान के साथ होते हैं, अपने देह के साथ भी उसका रिश्ता नहीं होता है। रिश्ता होना अर्थात बुद्धि देह में जाना बार बार, लेकिन देह का हम यूज करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, लेकिन बिल्कुल न्यारे और प्यारे होकर उसको हम यूज करते रहें, उसको कहेंगे देह से भी न्यारा रहना। हमें एक स्लोगन सदा याद रखना है। कौन सा स्लोगन? जितना रहेंगे देह से न्यारे, जितना रहेंगे देह से न्यारे उतना बनेंगे बाबा के प्यारे। अभी ये बॉडी ने हमें कौड़ी तुल्य बनाया और गॉड हमें हीरे तुल्य बनाता है, तो बॉडी की कंपनी से तो हम नीचे गिरते आए और गॉड की कंपनी से तो हम ऊपर चढ़ती कला की अनुभूति करते रहे। तो हमें फरिश्ता बनने के लिए देह से भी रिश्ता तोड़ना होगा। तो फरिश्ता अर्थात जैसे फ्लाइंग सॉसर सदा उड़ती रहती हैं, ऐसे फ्लाइंग एंजल सदा उड़ते रहते हैं। तो फरिश्ता अर्थात हमेशा उड़ते रहने वाला उड़ती कला में। तो फरिश्ता अर्थात फर्श से, फर्श वासियों से कोई भी रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ अनुभव करना। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने इमर्ज करना जरूरी है कि मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसा है। कैसा है भाई? उसका आकार इसी स्थूल शरीर जैसा ही है, अंतर इतना ही है। ये स्थूल पांच तत्वों से बना हुआ है और वो दिव्य प्रकाश पुंज से बना हुआ है, और तीन बातों की संपन्नता उस फरिश्ता स्वरूप में पाई जाती है। ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न और ईश्वरीय गुणों से संपन्न वो फरिश्ता स्वरूप होता है। और निरंतर हमारी बुद्धि की तार परमात्मा के साथ सदा जुटी हुई रहती है, और बहुत सुंदर पवित्रता का क्राउन भी पहना हुआ होता है। तो ऐसा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपना ही सामने इमर्ज करें और ऐसा अनुभव करें कि मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मुझे सेखेन करना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर, जब मेरे समान बन जाओगे तो मैं आपको सेखेन करूंगा। तो मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है। ये दर्श सामने क्रिएट करने से आपके पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी और आप अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की ओर तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। हम देखते हैं स्थूल गवर्नमेंट के पास आर्मी होती है, वो आर्मी क्या करती है, कोई मानवता पर ऐसा विघ्न आता है, संकट आता है, तो ऑर्डर मिलते ही भागते हैं और मानवता की मदद करते हैं। तो ऐसे ही ऑल माइटी गवर्नमेंट के पास भी स्पिरिचुअल आर्मी होती है फरिश्तों के रूप में। जिस समय कोई ऐसी आपदा आती है, ऐसा संकट आता है, तो ऑर्डर मिलते ही वो फरिश्ते उड़ते जाते हैं और मानवता की सल्वेशन आर्मी बनकर सल्वेशन उनको देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कुछ वर्ष पहले स्पष्ट कह दिया है कि अभी कुछ भी हो, अपनी फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। क्यों भाई? क्योंकि बाबा हमें फरिश्ता स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा करने का चांस दिलाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी हालत में हमें फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहना है। तो जैसे जैसे हम विनाश के समीप पहुंचेंगे, जब विनाश के बादल इस धरती पर मंडराएंगे, तो फरिश्ते सारे संसार में उड़ते हुए जाएंगे और अनेक आत्माओं को मदद करते रहेंगे और अनेकों का भला करते रहेंगे। ये चांस हमें मिलने वाला है, क्योंकि दुनिया वालों को भगवान का परिचय नहीं है। जब वो संकट में फंसे रहते हैं तो कहते हैं, कोई ऐसा फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल कर चला जाए, क्योंकि फिर भगवान का परिचय नहीं है उनको। तो इसलिए हमें अपनी फरिश्ता स्थिति को निखारना है, और ऐसी कुछ भी आपदाएं आती हैं उस समय हमें फरिश्ता स्वरूप में आगे बढ़ना है। मुझे याद है 1985 में मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, उसमें 1.5 लाख लोगों ने शरीर छोड़ा था। उन दिनों में ओम शांति भवन में गुरुवार के दिन भोग लग रहा था, तो मोहिनी दीदी जी बाबा के पास संदेश लेकर गईं, तो बाबा ने बहुत दर्दनाक सीन दिखाया। वो सीन ऐसा था, एक पहाड़ी पर जिन्होंने उस अर्थक्वेक में शरीर छोड़ा था वो बहुत चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। अभी आप सोचो, जबरदस्ती जिनसे शरीर छीना गया, जबरदस्ती उनको अपने परिवार से दूर किया और अपनी प्रॉपर्टी से भी दूर किया, कितनी वह शांत आत्माएं होगी। तो एक पहाड़ी पर बाबा ने उनको इमर्ज किया और दूसरी पहाड़ी पर बाबा ने बीके भाई बहनों के ग्रुप को इमर्ज किया। और बाबा ने कहा कि अभी अपने लिए नहीं, ऐसी अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को मदद करने के लिए अपनी फरिश्ता स्थिति को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे आगे चलकर बहुत परिस्थितियां आने वाली हैं और आपको बहुत सेवा करनी होगी। इसलिए बाबा हमारा भाग्य बनाने के लिए ये सुनहरा मौका हमें देते हैं, अनेक आत्माओं का भला करते हैं और उसमें हमारा भाग्य भी बनता जाता है। तो इसलिए फरिश्ता स्थिति अनुभव करना बहुत सरल है, कि मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। ये स्थूल हड्डी मांस की ड्रेस नहीं, लेकिन दिव्य प्रकाश पुंज की काया ड्रेस धारण कर ली है। ऐसी मानसिक स्थिति हमें बनाना जरूरी है। छठवीं बात, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें कर्मातीत स्थिति के समीप जाना होगा। कर्मातीत स्थिति अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त और जीवन मुक्त स्थिति। कर्मातीत स्थिति अर्थात देहातीत, संसारातीत और इंद्रियतीत अनुभूति करना, अवस्था बनाना, उसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति की अनुभूति बढ़ाना। तो कर्मातीत स्थिति एक वाहन है बेहद की सेवा करने का। कर्मातीत स्थिति वाली आत्माएं एक ही समय चारों तरफ चक्कर लगाकर सेवा कर सकते हैं। जैसे किसी वाहन के द्वारा स्थूल सैर हम करते हैं, ऐसे कर्मातीत स्थिति भी एक वाहन है, उसके द्वारा हम चारों तरफ जाकर सेवा कर सकते हैं, उसको ही दूसरे शब्दों में कहते हैं अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करना। तो हमने देखा है ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत स्थिति जब से बाबा अनुभव करते थे, बाबा अपने अंतवाहक शरीर के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करते रहे, और जब बाबा ने स्थूल देह का त्याग किया और फरिश्तों की दुनिया में गए तो वहां से भी बाबा ने फरिश्ता स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा की। उसका परिणाम क्या हुआ, मधुबन में कई विदेशी बाबा से मिलने आते थे, तो मैंने कुछ एक विदेशी भाइयों को बहनों को पूछा कि आप इस ज्ञान में कैसे आए, तो कईयों ने मुझे बताया कि हमारे स्वप्न में सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा बाबा आए और उन्होंने हमें लिटरली सेंटर का एड्रेस बताया और हम वहां पहुंचे और हमें बाबा का परिचय मिला। ऐसे एक ने नहीं, कईयों ने अनुभव बताया, कईयों ने अनुभव बताया। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपने अंतवाहक शरीर के द्वारा बहुत सेवा की, ऐसे हमें भी करना है, लेकिन उसके लिए कर्मातीत स्थिति को समीप लाना जरूरी है। उसके लिए हमें कर्मेंद्रियों से न्यारा होकर कर्म योगी बनना होगा। कर्मातीत स्थिति की अनुभूति करना अर्थात कर्मेंद्रियों के भान से अतीत, माना दूर, कर्मेंद्रियों के भान से अतीत, और दूसरा जो हम कर्म करते हैं कर्म के प्रभाव से अतीत अर्थात दूर, ऐसा अनुभव करते रहने से हमारी कर्मातीत स्थिति निखरती जाती है। हमें बाबा ने ये ज्ञान दिया है तो ऐसी स्थिति हमें सारे दिन भर में कर्म योगी अनुभव करते हुए निखारते जाना है। आखिर भी वो स्थिति हमने प्राप्त करना ही है। ब्रह्मा बाबा एक डेढ़ वर्ष तक कर्मातीत स्थिति में रहे, क्योंकि बच्चों को पता चले कि देखो कर्मातीत स्थिति में कैसी अवस्था होती है, बच्चे बाबा से सीखें, बाबा को फॉलो करें। उसके लिए बाबा कुछ वर्ष ऐसे कर्मातीत स्थिति में रहे, तो कर्मातीत स्थिति की अनुभूति करते रहने से हम साक्षात्कार मूर्त बनते जाते हैं। और सातवीं बात, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें बाबा का सपूत बच्चा बनना होगा। सपूत बच्चा बनना अर्थात जो बाबा हमें शिक्षाएं मुरली में देते हैं उनको जीवन में धारण करके उनका सबूत देना। वो भी जो भी बाबा शिक्षाएं देते हैं उन शिक्षाओं को आज ही मुरली में जो होमवर्क देते हैं मुझे आज ही पूरा करना है, कल पर हमें नहीं छोड़ना है, उसको कहते हैं सपूत बच्चा बनना। और जो सपूत बच्चे होते हैं उनके सिर पर भगवान का हाथ सदा रहता है, उन पर खुदा सदा मेहरबान रहता है। अब जिस पर खुदा मेहरबान है उनको सदा सफलता मिलती रहती है, हर कार्य में विजय मिलती रहती है, और उनके द्वारा बाबा साक्षात्कार बहुत कराते रहेंगे, क्योंकि बाबा के पास साक्षात्कार कराने की चाबी है। तो सपूत बच्चा बनना अर्थात सबसे पहला स्लोगन हमारा मुख्य स्लोगन है। कौन सा स्लोगन है भाई? हाँ जी, पवित्र बनो योगी बनो, ये हमारा सबसे पहला मुख्य स्लोगन है। उस स्लोगन को जीवन में धारण करना, बहुत अच्छी तरह से योग की स्थिति बनाना। एक बार किसी बच्चे ने ब्रह्मा बाबा से पूछा, प्रश्न पूछा कि बाबा आपने तो अपना शरीर शिव बाबा को सेवा के लिए दे दिया, तो सारा दिन तो बाबा आपके रथ को यूज करते हैं, आप पुरुषार्थ कब करते हैं? तो बाबा ने जवाब दिया, ये शरीर मेरा शिव बाबा सारे दिन भर में यूज करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त के पहले का समय, 1 बजे 2 बजे 3 बजे मैं उठकर तपस्या में लीन रह जाता हूँ और अपनी पर्सनल कमाई करता रहता हूँ, ऐसा मैं सपूत बाबा का बच्चा हूँ। क्योंकि सारे दिन भर में हम देखते हैं सेवा में बहुत बिजी रहते हैं। बाबा ने कहा अमृत वेले थोड़ा सा योगाभ्यास करते हो और जैसे सेवा के क्षेत्र में जाते हो तो योग को एक किनारे रख देते हो, तो कैसे, ये तो काम नहीं चलेगा। इससे कर्म और योग साथ साथ चलें, ये कला हमारे पास होना जरूरी है। कर्म में योग हो और योग में कर्म हो, क्योंकि कर्म में योग होने से कर्म में दिव्यता आती रहती है, और योग युक्त कर्म करने से क्या होता है, डबल कमाई हमारी होती है, कर्म से भी और योग से भी। इसलिए बाबा ने कहा है, जो मेरे महावीर बच्चे हैं, जो मेरे शक्तिशाली बच्चे हैं, उनों को कर्म और योग दोनों एक साथ करने की क्षमता होती है, वही महावीर बच्चे कहलाते हैं। तो इस सभा में सभी महावीर बच्चे बैठे हैं और उनों के पास ये क्षमता बिल्कुल है। देखो, बाबा ने आपको एक गोल्डन चांस दिया है, ये जो धरती है मधुबन की, सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल धरनी है, जिस धरती पर भगवान के पद्रामणि इतने वर्षों से हुई हैं, जिस धरती पर सारे संसार के महान आत्माएं तपस्या करते रहे हैं, उस धरती पर आना और ऐसी तपस्या करना ये बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, और आपको वो गोल्डन चांस मिला हुआ है। तो इस धरती पर आकर हमें क्या करना है, बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव की पंजी को बढ़ाना है। बाबा का इशारा है, वर्तमान समय अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। अनुभव की अथॉरिटी वाले आने वाले हलचल के समय भी अचल स्थिति बनाने में सफल होंगे। अचल स्थिति को मेंटेन करते हुए अनेक आत्माओं की सेवा भी करेंगे और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार मूर्त बनकर साक्षात्कार भी कराएंगे। और जिनके पास अलौकिक अनुभव की पूंजी नहीं होगी, माया उनको कठपुतली की तरह नचाएगी। तो हम इतने बड़े बाप के बड़े बच्चे और हमें माया कठपुतली की तरह नचाए, नहीं हो सकता है। हम तो भगवान के बच्चे हैं और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हैं और बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले हैं। तो एक बात याद रखना, इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कोई भी अलौकिक अनुभव करना है तो उसकी एक शर्त है। बोलिए, कौन सी शर्त है? हम सभी यहां क्यों आए हैं? बहुत सुंदर और गहन अनुभव करने के लिए, है ना? लेकिन किसी भी अलौकिक अनुभव को करने के लिए एक शर्त है। कौन सी शर्त है बोलिए? हाँ जी, अनुभव। जब तक स्वयं को अनु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, स्टार नहीं समझते हैं, तब तक इस ज्ञान मार्ग में कोई भी अलौकिक अनुभव नहीं हो सकता है। और जैसे आप अनु समझते हैं, बिंदु समझते हैं, अलौकिक अनुभव की खान आपको मिल जाती है, अलौकिक अनुभव की वर्षा आप पर सदा होती रहती है। इसलिए हमें क्या करना है? स्वयं को क्या समझना है? बिंदु अणु समझना है। देखो, बाबा ने हम सभी को पुरुषार्थ रूपी कार दी है। उस कार को हमें याद की यात्रा पर दौड़ाना है। लेकिन वो पुरुषार्थ रूपी कार को स्टार्ट कैसे करें, ये कला हमारे पास होनी चाहिए। भाई, पुरुषार्थ रूपी गाड़ी को स्टार्ट कैसे करेंगे बताओ? भाई लोग, स्थूल कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाते हैं, बैटरी स्टार्ट होती है और गाड़ी स्टार्ट होती है। अब इस पुरुषार्थ रूपी कार को कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे बताइए ना। जब हम स्वयं को स्टार समझते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और याद की यात्रा में दौड़ती रहती है। लेकिन हम केवल स्टार नहीं हैं, हम कौन हैं? हम सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार हैं, इस बेहद के ड्रामा के हीरो एक्टर हैं, हीरो एक्टर है, ऑर्डिनरी एक्टर नहीं है। बाबा ने कहा है, जितने भी संसार में आविष्कार हुए हैं वो आपके सेवा के लिए हुए हैं, आपके कारण हुए हैं। तो आविष्कार होते हैं हमारे कारण और दूसरों को उसका फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। तो हम सभी हीरो एक्टर हैं, साधारण एक्टर नहीं हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, हीरो एक्टर होने के कारण मैं आपको स्पेशल ड्यूटी देता हूं। कौन सी ड्यूटी दे रहे भाई बताओ? हाँ जी बोलिए ना। एक ड्यूटी देता हूं, सदा खुश रहना है और खुशियां बांटना है। ये ड्यूटी मैं आपको देता हूं हीरो एक्टर होने के कारण। अब खुशी बांटने के लिए क्या करना होगा भाई? हाँ जी, एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर होगा, उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी, कोई देखना नहीं चाहता है। ये रोती सूरत कौन देखेगा, उदास सूरत कौन देखेगा? तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। तो हमारे चेहरे पर साक्षात्कार मुहूर्त बनने के लिए चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट सदा छाई हुई हो। ये देखो भाई, मेरा फोटो ले रहा है तो मैंने अपना चेहरा बदल कर दिया। भाई, ये नकली मुस्कुराहट कब तक रहेगी? फिर आपके वैसे के वैसे ही चेहरा होगा। तो मन की प्रसन्नता चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट के रूप में छा जाती है। और हमारी मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए तीन चोर बार बार हमारा मन का दरवाजा खटखटाते हैं। और कौन से तीन चोर हैं? हाँ जी, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। सत्य ज्ञान मिल गया, हम सुख है, सुख में झूम रहे हैं। तो हमारी प्रसन्नता को चुराने के लिए तीन चोर बार बार हमारा दरवाजा खटखटाते हैं। कौन से हैं? चिंता, भय और बोझ। किसी को फटकने नहीं देना है। चिंता मणि बाप मिल गया भाई, चिंता किस बात की? भय सर्वशक्तिवान बाप मेरा बैकबोन है, मेरे सिर पर उसका हाथ सदा रहता है, भय किस चीज का? चिंता, भय और बोझ सारे संसार का बोझ ढोने वाला भगवान, मैं उसका बच्चा हूँ, मेरा बोझ नहीं ढोएगा? बिल्कुल ढोएगा। तो तीनों बातों से हम फ्री हो गए हैं और हमारे चेहरे पर हमेशा मन प्रसन्न होने के कारण चेहरा मुस्कुराता रहता है ना? साक्षात्कार मूर्त बनना है तो चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट होना जरूरी है। बाबा ने कहा है, आपको चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी होगी। वाचा कर्मणा सेवा आपने बहुत किया, अभी चलन और चेहरे से सेवा करनी है। इसलिए चलन से हमारा चरित्र दिखाई देता है, तो चलन को भी और चेहरे को भी हमें सदा फ्रेश रखना है, मुस्कुराता हुआ रखना है, और चलन को भी हमेशा रॉयल अनुभव करते जाना है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि बाबा को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेदारी मौज आत्मा पर है, और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए साक्षात्कार मूर्त मुझे बनना है, और उसके लिए श्रेष्ठ स्थिति मुझे बनाना ही है। एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्तुति हो, लेकिन जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्तुति होगी, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति आपकी होगी। जहां आप जाएंगे आपका ओरा काम करता रहेगा, और वहां जो भी इर्द गिर्द मनुष्य आत्माएं होगी उनके मानस पटल पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आपको एक बात बताता हूं, फरिश्ता स्थिति का साक्षात्कार करने के लिए हमें क्या करना होगा। एक बार की बात है, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, एक सिद्धांत है, जो हमारी आंतरिक स्थिति होती है, कोई अगर हमें देखता है तो देखने वाले के मानस पटल पर हमारी आंतरिक स्थिति का रिफ्लेक्शन होता है, और उसको उस स्थिति का साक्षात्कार होता है। एक बार की बात है, ब्रह्मा बाबा मेडिटेशन हॉल जो मधुबन में है, उस पहाड़ी पर दोपहर को गोबर के गोले बना रहे थे निकर और पैंट पहनकर। तो दोपहर को सभी आराम कर रहे थे, तो एक अचानक व्यक्ति, राजस्थानी एक बूढ़ा व्यक्ति, पांडव भवन के गेट से अंदर आया, और वो सोचने लगा कि इस संस्था का मुखिया कौन है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है कोई नजर नहीं आ रहा है। वो पहाड़ी पर एक कोई बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा है, कुछ कर रहे हैं, चलो वहां चलते हैं। वहां बाबा के पास धीरे धीरे गया, जैसे बाबा के पास वो गया और बाबा की नजर उस पर पड़ी और उसकी नजर बाबा पर पड़ी, तो बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार उसको हुआ, और जैसे साक्षात्कार हुआ वो बाबा के पैर पकड़ने लगा। ये व्यक्ति कितना साधारण काम कर रही, लेकिन कितनी बड़ी हस्ती है, बाबा के पैर पकड़ने लगा। तो कहने का मतलब, कर्म कितना भी साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो, क्योंकि स्थिति का रिफ्लेक्शन देखने वालों पर स्वतः ही पड़ता है। इसलिए 87 में हम मधुबन निवासी बाबा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात हमसे कही थी कि देखो मधुबन में आप बहुत साधारण सेवा करते हो, भोजन बनाने की, सफाई करने की, कपड़े धोने की, बहुत साधारण सेवा है, लेकिन कोई अगर आपको खिड़कियों से देखे, दरवाजे से देखे हैं, तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति का वो साक्षात्कार करें कि ये देखो कितना साधारण लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो कोई महान फरिश्ते हैं, ये कोई महान देवता हैं, ऐसा साक्षात्कार उनको हो। इसलिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति को सदा मेंटेन करते रहना कि हम खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं, खुदा के यज्ञ की सेवा हम कर रहे हैं, कोई साधारण कर्म नहीं कर रहे हैं, किसी धर्मशाला में या किसी मंदिर में हम सेवा नहीं कर रहे हैं, ये भगवान का महायज्ञ है। इस महायज्ञ की सेवा को प्रभु प्रसाद कहते हैं, वो प्रभु प्रसाद हमें मिल रहा है, हमारा बहुत महान भाग्य है। इसलिए हम भाग्यशाली आत्माएं अपने भाग्य की सराहना करते रहें और सदा खुशी में झूमते रहें। ठीक है ना भाई? तो जब बाबा के बच्चे फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहेंगे तो ये संगम योग ब्राह्मणों का योग नहीं होगा, लेकिन फरिश्तों का युग कहलाएगा। चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आएंगे। और बाबा कहते हैं देवताएं भी वरमाला लेकर आप फरिश्तों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप फरिश्ते सारे अभी तैयार हो जाओ ताकि बाबा साक्षात्कार की चाबी घुमा दे और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराते रहें। तो अभी हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। सभी एकदम चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। इस सभा में जो भी महान आत्माएं पहुंचे हुए हैं, बाप दादा वतन से देख रहे हैं और बाबा बच्चों की खातिरी कैसे करते हैं, घर में कोई मेहमान आता है तो खातिरी करते हैं, तो बाबा हम बच्चों की खातिरी कैसे करते हैं, बहुत सुंदर और गहन अनुभव की गिफ्ट देकर हम बच्चों की खातिरी करते हैं। तो इसलिए हम बहुत सुंदर योग का गहन अनुभव करने जा रहे हैं। ओम शांति। ईश्वरी रूपी चैतन्य दिव्य में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रूपी चैतन्य हीरा विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य हीरे से अष्ट शक्तियों की किरणें, अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए अपने स्थूल देह को साक्षी होकर देख रहा हूँ। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज महज आत्मा ने धारण किया है। परम सुख की अनुभूति हो रही है। सचमुच कितनी न मैं नसीबवान आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा स्थूल देह से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही। ओहो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। जा चारों सफेद ही सफेद, सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मोज निराकार बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली परिस्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है, मेरे अति प्यारे। शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटि में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मौज फरिश्ते को स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से प्रवाहित होकर मुझ फरिश्ते की ओर आ रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में लहरा रहा हूँ, बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूँ। बाबा की बाहों में झूलते झूलते बाबा की बाहों में समा गया हूँ। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नयनों से स्नेह के मोती टपक रहे हैं। शिकिलते बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है, मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, जो भक्ति मार्ग में गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा मैं निभाने आया हूँ। मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, मेरी गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि निराकार भगवान साकार माध्यम से शिक्षक बनकर मुझे पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था।
वो हर रोज दूर देश से आकर मुरली के माध्यम से मुझे मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं। इससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। मुझे अपने टीचर पर नाज है। मेरे लाडले बच्चे कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। और मैंने दिए हुए महामंत्र मन मना भव का अज्ञापा जाप करते रहो। मेरे नैनों के नूर बच्चे कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ बैठो, मेरे साथ अपने दिल के समाचार की लेन देन करके स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करो। मेरे साथ खाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ चलो। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच चुके हूं जहां चारों सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा, प्यारा परम धाम, मेरा मूल वतन। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल, मस आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा अपने दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूँ, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूँ, जी भर के देख रही हूं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी, और हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपने दिल तख्त रूपी शीतल गोद में बिठा दिया बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा, बाबा मेरे सलोने सजन हैं, मैं आत्मा उनकी सजनी हूं, मेरे सलोने शिव साजन मुझे हर रोज दिव्य गुणों के आभूषणों से सजाते रहते हैं। मेरे दिल में भी अपने शिव साजन के महिमा के गीतों का साज सदा बसता रहता है। मेरे दिल में शिव साजन का प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मैं आत्म सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूँ, जा रही हूँ, अति समीप पहुंच गई हूँ, और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूँ, प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ, समा चुकी हूँ, लीन हो चुकी हूँ, खुदा पर विदा हो चुकी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती। मैं सजनी शिव साजन मैं बन चुकी हूँ, मेरे सलोने शिव साजन एक तरफ अथाह प्यार के सागर है तो दूसरे तरफ अथाह शक्तियों के सागर भी है। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में परिवर्तन हो रहे हैं। मेरे सलोने शिव साजन ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। सलोने शिव साजन ज्ञान सूर्य से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की मूसलाधार वर्षा मुझ आत्म सजनी पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्मा सजनी शिव साजन से असीम शक्तियां प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्मा सजनी स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा सजनी अपने शिव साजन के प्यार में पागल होकर गीत गा रही हूँ। तो सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, न देखो तुझे तो लागे न ये जिया, खिले न ये जिया। बस मेरे दिल में एक ही आस है कि मेरे दिल रूपी मंदिर में, मेरे सलोने शिव साजन के प्यार का दीपक अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे। और मैं आत्मा सजनी सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी शिव साजन के महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। इतने विशाल पीस पैलेस में मैं आत्मा सजनी अपने शिव साजन से महामिलन मंगल मिलन का आनंद ले रही हूँ, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापी इस साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूँ, वाया सूक्ष्म वतन वापिस आ रही हूँ। और इस शरीर रूपी मकान में मैं आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर
विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हों। महज शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की प्रखर किरणें चारों ओर वायुमंडल में फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। डायरेक्ट परम धाम से ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। मैं आत्मा शक्तियों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूं। शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रहा है। मज आत्मा रूपी मस्तक मणि से अष्ट शक्तियों की चमक चारों शरीर तो मेरा केवल साधन है, शरीर तो केवल मेरा वस्त्र है। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं,